नवा पारा अब हम करने वाले हैं। क्या ये 8 पारे जो पड़े हैं हज़म हो गए? किस किस को हज़म हो रहे हैं? देखिए, हर अगला पारा शुरू करने से पहले अपने आप को पूछा करें, मैं कहाँ खड़ी हूँ। इंशाल्लाह आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे, इसका असर आएगा। अगर आप देखिए कि पिछले पारे में से जो चीज़ें स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ के साथ सामने आती हैं, उसमें चंद चीज़ें देख लीजिए। क्या थीम था 8वें पारे का? अना। अना अच्छी चीज़ है कि बुरी? अच्छी चीज़ है। शर्त क्या है? एक हद पे हो, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देखिए कि हमने उस पूरे पारे में जो अना से मुतल्लिक चीज़ें पढ़ी थी वो आप सारी खुद दोहराएंगे। पारे के अंदर हमने ज़ुखरुफ़ अल कौली गुरूरा की बात पढ़ी थी, अक्सरियत को नहीं मानना, इसको देखा था। और अगर अक्सर के पीछे चलोगे तो भटक जाओगे। यानी मुझे तो ऐसे लगता है कि 8वें पारे ने आपको मुझे पीपल प्लीज़र से ज़्यादा अल्लाह प्लीज़र बना दिया। फिर हमने उसमें इब्लीस और आदम के किस्से में जो देखी थी चीज़ें, वकास समहुमा, कस्में खा खा कर इब्लीस ने आदम को और हव्वा को अपनी बातों में उतार दिया। आज मुझे आपको भी शैतान के ट्रिक्स को समझना है। और सूरत अल अनाम के आखिर में कुल इन सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ा। इससे क्या पता चला था कि हमने इंशाअल्लाह ताला अपना जीना मरना, अपनी इबादत कुर्बानी सब अल्लाह के लिए करनी है। और सूरत अल अराफ शुरू होती किससे? अल्हम्दुलिल्लाह के लफ्ज़ से। तो क्या कहिए सब मिलकर? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपनी अना को झुकाना है, एक दुआ मांग लीजिए, इल्म के हसूल की दुआओं में से एक दुआ है, अल्लाहुम्मन्फ़ानी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यन्फ़ाउनी वज़िदनी इल्मा। क्या सीखा आपने? मैंने, ए अल्लाह मुझे इस इल्म से नफ़ा दे जो तूने मुझे सिखाया। बोलिए आमीन। और मुझे वो इल्म सिखा जो मुझे फ़ायदा दे और मेरे इल्म में इजाफा फरमा। किस किस को अब माल बढ़ाने की तरह इल्म बढ़ाने की तलब लग गई है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये तिर्मिज़ी और इब्ने माजा की रिवायत थी। इल्म की दुआएं मांगते रहिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपका इल्म बढ़ाएगा। पारा नंबर 9 जो के सूरत अल अराफ की आयत 88 से शुरू होता है, कालल मलाऊ इसका नाम है। तज़किया सीरीज़ में हम इसको करेंगे तकब्बुर, खुद पसंदी और फ़ख्र। यानी असल में ये स्टेप्स हैं, असल चीज़ तकब्बुर ही है बीच में। इसकी रोशनी में पिछले बारे में क्या पढ़ा था? अना। अना की दो बीमारियां क्या पड़ी थी? या घट जाती है या बढ़ जाती है। तो आज हम पढ़ने लगे हैं बढ़ी हुई अना का अगला स्टेप। आप देखिए, कोई भी बीमारी होती है ना, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं ना हमारी ज़िंदगी में। कैंसर एक ही दिन में तो नहीं होता। इसी तरह तकब्बुर जैसी मोज़ी बीमारी कि जिसकी मौजूदगी में जन्नत नहीं मिलेगी। देखिए, उर्दू में एक लफ्ज़ बोलते हैं हम, ला इलाज मर्ज़। सब नहीं लिख रहे, ला इलाज मर्ज़ हमारी ज़ुबान में क्या है? जिसका इलाज नहीं है। मुसलमान का अल्टीमेट गोल के आखरत के लिए जन्नत, तो जन्नत से ला इलाज। बात समझ गए? जिसके दिल में एक राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर है वो जन्नत में नहीं जाएगा। ये पढ़ने लगे यहाँ पर, मैं केयरफुल होने की ज़रूरत है कि नहीं? आपकी मेरी जन्नत की बस निकल जाएगी, जन्नत की फ़्लाइट मिस हो जाएगी अगर दिल में एक राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ। ठीक है, तो आइए बुक में से साथ साथ पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह इस पे जो बात करेंगे थॉरस इसकी कर लीजिए स्टडी, ताकि फिर बाद में इसको समझना और मानना आसान होगा। मेरे साथ रहिएगा। किताब पे पेज है 147। अपने आप को बिल्कुल अपनी अदालत में रखिए, अपने आप को एक उस पेशेंट की तरह रखिए कि जिसको खुदा न खास्ता ऐसी बीमारी ना लग चुकी हो कि जिसकी मौजूदगी में वो जन्नत से दूर यानी इलाज से दूर हो गया। تزکیہ سیریز میں اس پارے کا موضوع تکبر ہے. اس پارے کا آغاز سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 88 سے ہوتا ہے. اس آیت کو تکبر کی روشنی میں دیکھیں گے. اس پارے میں تکبر کی مختلف قسموں کا بیان ہے. تکبر اتنا بڑا عمل ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی نافرمانی کا سبب تکبر ہی تھا, جو ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے کے معاملے میں کی. تکبر کے بارے میں بہت ساری آیات قرآن پاک میں ہیں اور احادیث بھی موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بات تکبر کے گناہ کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے. ہائی لائٹ کیجیے, اور وہ کیا ہے؟ کہ جس دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا. سوچئے ذرا, ہم ساری زندگی نماز پڑھتے رہے, روزے رکھتے رہے, حج کرتے رہے اور صدقات و خیرات کرتے رہے, بات میں چلا کیوں ہو آپ کے دل میں تکبر تھا؟ بڑی بات تھی, بس آپ تو جنت میں نہیں جا سکتے. تو ضرورت ہے کہ ہم اس کی خطرناکی کو سامنے رکھتے ہوئے اس پارے کو دیکھیں اور اپنا جائزہ لیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی متکبر شخص اپنے آپ کو متکبر نہیں سمجھتا. یہ اس برائی کی علامت ہے. دیکھیے, اکثر لوگ جو بیمار ہوتے ہیں نا, خود کو بیمار نہیں سمجھتے. متکبر بھی خود کو بیمار نہیں سمجھتا. جیسے کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ دوسرے کہیں گے کہ آپ بیمار ہیں, لیکن وہ کہے گا میں بیمار نہیں ہوں. تکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ ہر بندہ خود کو پاک سمجھتا ہے لیکن ہوتا وہ بیمار ہے. تو ہم سب نے قرآن پاک کو پڑھ کر اس بیماری کو ڈھونڈنا ہے. کوئی بھی بیماری ڈھونڈنی ہو تو کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ علامات, سائنس. اسی طرح اس کی کئی علامتیں ہیں. اس کے پیدا ہونے کا ذریعہ دیکھیں گے کہ یہ تکبر کیسے پیدا ہوتا ہے. جس طرح جسم میں کوئی بیماری ایک دم پیدا نہیں ہوتی, اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. مثلا کبھی زیادہ کھانا اس کا سبب ہوتا ہے, کبھی ڈپریشن ہوتا ہے. بالکل اسی طرح تکبر تین مرحلوں سے گزرتا ہوا حقیقی تکبر تک پہنچتا ہے. آپ نوٹ کیجئے تکبر کے بارے میں چند باتیں. سب سے پہلا جو اس کا درجہ ہوتا ہے وہ خود پسندی ہوتی ہے. یعنی بندہ خود کو پسند کرنے لگ جاتا ہے. پہلی خرابی کیا ہے؟ آپ خود کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں. اس وقت اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس کی انا نہ اللہ کے آگے جھکتی, نہ لوگوں کے آگے, بلکہ خود کو ہی خدا سمجھ لیا. ہر وقت اپنے بارے میں فکر مند ہے. اپنی ذات بڑی پیاری لگتی ہے. اس کو اپنی ذات کے غم اتنے بڑے لگتے ہیں کہ دوسروں کے غم اس کو غم نہیں لگتے. اس درجے پر کوئی علاج کرے تو بہت آسان ہے. یہ پہلا سٹیپ ہے. صرف ایک کام کر لیں, یہ بیماری اسی وقت ختم ہو جائے گی. اور وہ کیا ہے؟ اپنی سوچ کو درست کر لیں. تو لکھیے, خود پسندی کا علاج سوچ کی اصلاح ہے. خود پسندی کا سب سے بڑا تعلق انسان کی سوچ سے ہوتا ہے. یہاں تک کہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں. لوگوں کی نظروں میں آپ ایک عام انسان ہوتے ہیں, لیکن خود کی نظروں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ چکے ہوتے ہیں. اپنے آپ پر نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ اپنی ذات سے باہر نکل آئیں گے. اب پہلے درجے پر اگر سوچ کی اصلاح نہ کی جائے تو تکبر دوسرے درجے میں داخل ہوتا ہے. اس پیراگراف سے پہلے نمبر 2 لکھ لیجئے. بک ریڈنگ کے بھی بہت پیارے طریقے ہیں, انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی. بک ایک دم پکڑ کے تھورو پڑھیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. رک رک کے بیچ میں ہائی لائٹس کر کے اور نمبرز اور پوائنٹس اور کامرس لگا کے پڑھیں تو بات سیدھی دل میں جاتی ہے. تو اس پیراگراف پہ نمبر 2 لکھیے. جو ہی 2 نمبر پہ نظر پڑے گی پتہ چلے گا کہ تکبر کا دوسرا درجہ ہم سمجھنے لگے ہیں. اس کو کہتے ہیں فخر. خود پسندی میں تو اپنے اندر ہی اندر اپنے جذبات رہتے ہیں. کسی کو تو نہیں پتہ نا کہ آپ اس وقت اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں. تو یہ خود پسندی کیا تھی؟ اندر کی بیماری تھی. جیسے کچھ بیماریاں اندر ہوتی ہیں, باہر والوں کو نہیں دکھتی, لیکن دوسرے درجے میں یہ بیماری باہر آ رہی ہے. لوگوں کے درمیان صرف اپنی باتیں, اپنے خاندان کی باتیں کرنا, اور پھر ایسی کیفیت آتی ہے کہ انسان پھٹنے لگتا ہے. جہاں بیٹھے گا صرف اپنی باتیں اور اپنی ذات کو بڑا ثابت کرے گا. یہ دوسرا درجہ ہوتا ہے. اس درجے پر بھی بیماری رک سکتی ہے کیونکہ یہاں آپ صرف اپنی ذات تک ہیں, लेकिन जब ये बीमारी इस दर्जे पर नहीं रुकती तो फिर तीसरा दर्जा शुरू होता है जिसको असल में तकब्बुर कहते हैं। और लिख लीजिए इधर अपने पास से एक जुमला, तकब्बुर ला इलाज मरस है। अब आपका मरीज़ फौत हो जाएगा लेकिन उसका इलाज नहीं होगा जी। तकब्बुर क्या है? एक बीमारी, ये दिल की बीमारी है जिसका इजहार इंसान के अमाल से होता है। आप कह सकते हैं कि तकब्बुर इतनी ख़तरनाक बीमारी है जिसमें दिल भी बीमार, आसाब भी बीमार और ज़ुबान भी बीमार। तीन चीज़ें नोट करें। देखिए ना, दुनिया की हर बीमारी किसी न किसी उस से मुतल्लिक है ना। तकब्बुर ऐसी मनहूस बीमारी है कि दिल भी बीमार, मसल्स भी बीमार, ज़ुबान भी बीमार। ये बंदा एक नाकाबले इलाज किस्म की बीमारी का शिकार बन चुका होता है। ऐसा शख्स जो मुख्तलिफ दर्जों पर पहुँचता अपने आप को उधर ले जाता है तो फिर वो अपने आप को अल्लाह ताला से भी बड़ा समझने लगता है जी। क्योंकि अल्लाह का नाम क्या है पता है आपको? अल-मुतकब्बिर। मैं बहुत सोचती थी कि ये लफ्ज़ तो अच्छा नहीं है, फिर जब मैंने ख़ुद पढ़ाया अस्माउल हुस्ना सीरीज़ में अल-मुतकब्बिर, इतना उसको इंजॉय कि उस दिन मुझे समझ आया था कि वाकई अल्लाह को अल-मुतकब्बिर होना चाहिए। वो तो लायक है कि वो तकब्बुर करे, मैं और आप लायक नहीं है कि हम तकब्बुर करें। असल ये बात है, किबर की मुख्तलिफ किस्में हैं। सबसे बुरी किस्म अल्लाह के मुकाबले में किबर है। अब आप इसको हाईलाइट करके लिखें, सबसे बदतर किस्म का तकब्बुर क्या है? अल्लाह के मुकाबले में किबर। इसके अंदर इंसान अल्लाह ताला की बात को मानते हुए, अल्लाह की ज़ात को इसका हक देते हुए ख़ुद को बड़ा समझता है। मसलन नमरूद, फिरौन, इबलीस। इबलीस ने अल्लाह को माना लेकिन अल्लाह की बात को नहीं माना। यानी ये वो दर्जा होता है जहाँ बंदा अल्लाह के हुक्म को अहमियत ही नहीं देता। इसको अल्लाह के नबी की एक हदीस की रोशनी में समझें तो कांपने लगते हैं। अगर इसको एहसास हो जाए कि किबर क्या है तो लिख लीजिए कि अच्छे कपड़े पहनना तकब्बुर नहीं है, अच्छे जूते पहनना, अच्छा खाना खाना, ये तकब्बुर नहीं है। लेकिन हक बात को कबूल न करना और लोगों को हकीर जानना, ये तकब्बुर है। इस सूरत में इंसान अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानता, मैं ना मानूंगा वाली कैफियत होती है। फिरौन का किबर ऐसा ही तो था, इसी तरह नमरूद का भी। ये बदतरीन किबर है, बतर अल-हक की व गमतन नास, ये है तकब्बुर, लोगों को हकीर समझना और हक का इनकार कर देना। इसके बाद दूसरे दर्जे पर जो किबर है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में किबर होता है। कुफारे मक्का का किबर यही था। वो कहते थे लो हम एक बशर को रसूल मान लें जो हम जैसा है, खाता पीता और बाज़ारों में फिरता है। अल्लाह ताला किसी फरिश्ते को भेजता, लो हम मिट्टी के एक इंसान को रसूल मान लें, हम तो नूर को मानेंगे। ऐसे लोगों ने रसूल को नौरानियत के मुकाम पर फ़ाइज़ कर दिया। इसका ज़िक्र सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत 31 में हम पढ़ेंगे, 31 में। कहते थे अगर कुरान नाजिल भी होना था तो ताइफ़ और मक्का की बड़ी बड़ी शख्सियात जो अमीर लोग थे इन पर होता। ये तकब्बुर इंसान को अल्लाह के दीन की कबूलियत से दूर करता है। इसको हाईलाइट करें, रसूल के मुकाबले में तकब्बुर दीन को कबूल करने से रोक देता है। ऐसा शख्स होते होते फिर अल्लाह का भी मुनकर हो जाता है और अल्लाह की बात को भी नहीं मानता। किबर का इलाज क्या है? नंबर एक, पहले अल्लाह की बड़ाई को सामने रखा जाए। जो अल्लाह के मुकाबले में किबर आता है इसका इलाज क्या है? कि अल्लाह को पहचाने, देखे कि वो कौन सी ज़ात है, कितनी बड़ी ज़ात है, इसने मुझे क्या कुछ दिया। फिर दूसरी चीज़, अपनी ज़ात को देखे, मैं कितना छोटा हूँ और इतना छोटा हूँ कि इतने बड़े की बात नहीं मानती मैं। अपनी औकात पे गौर करें, कभी सुबह उठकर अपने ही मुंह की बदबू को तो नोट करें, जब वॉशरूम में जाए तो नोट करें मेरे अंदर से कितनी गंदगी निकल रही है। इतनी ही बदबू बर्दाश्त करना मुश्किल होती है। दो तीन दिन तक सर के बाल ना बनाए तो देखे सर में हाथ डालना मुश्किल हो जाए। ये तमाम बातों को नोट करने से इंसान को अपनी असल औकात मालूम होती है। ये दूसरा इलाज है। तीसरा तरीका, कायनात पे गौर करें, अल्लाह की नेमतों को देखें। हर चीज़ जो अल्लाह की मार्फत का ज़रिया उसको देखें, इंशाल्लाह ये तकब्बुर दूर होगा। तो अल्लाह के मुकाबले में तकब्बुर दूर करने के तीन बड़े रास्ते क्या हैं? अल्लाह की बड़ाई को देखें, अपने छोटे होने को देखें, और अल्लाह की नेमतों को और कायनात को देखें। दूसरा तकब्बुर था रसूल के मुकाबले में, इसका इलाज क्या है? सबसे पहले अल्लाह के नबियों के बारे में किताबें पढ़ें, इनकी सीरत पढ़ें, अल्लाह के नबी के सही मुकाम को पहचानें। फिर सबसे बढ़कर जो चीज़ फ़ायदा देती है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी को पढ़ लें। कितनी मुश्किलात से ये दीन आया, कितनी तकलीफ़ें सही। अगर मैं उनकी जगह होती तो क्या ये तकलीफ़ें बर्दाश्त करती? ख़ुद से पूछिए। आज हम दीन लेने में तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त कर सकते, कल देने में कहाँ से बर्दाश्त करते, सोचिए। इस तरह से पहचानें अपने आप को। इसके अलावा इस तकब्बुर का एक बहुत प्यारा इलाज है कि सहाबाए कराम की अल्लाह के नबी से मोहब्बत को पढ़ें। वाक़ियात हैं, पूरी बुक पढ़ाई हुई है नबी सल्लम से मोहब्बत की अलामतें और उसके वाक़ियात। डॉक्टर फजल अली साहब की किताब है, बारीक सी बुक है, मेरा ख्याल 2 घंटे में आप पूरी बुक पढ़ लेंगे। ऐसी बुक्स पढ़ें जिससे आपके दिल में अल्लाह के नबी की कदर आए। तो दूसरा भी इलाज हुआ, पहला क्या था? अल्लाह के मुकाबले में इलाज हो गया तीन तरीके से, अल्लाह की बड़ाई देखें, अपना छोटा होना देखें, कायनात पे गौर करें। दूसरा था रसूल के मुकाबले में, तो रसूल के बारे में जानें, सीरत पढ़ें, आपकी सहाबा के साथ जो ताल्लुक़ था, सहाबा जो आपसे प्यार करते थे उसको पढ़ें, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे तकब्बुर पे। तीसरा तकब्बुर जो असल में बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर ले लेता है, वो है इंसान का अपनी जिन्स के लोगों के मामले में तकब्बुर। यानी इंसानों का इंसानों के मामले में तकब्बुर, यानी ख़ुद को बड़ा समझना दूसरे लोगों के मामले में, हकारत से इनको देखना, इनकी बात को कबूल ना करना, दूसरों से अपने आप को बड़ा समझना, और अल्लाह ताला की चादर को अपने ऊपर लेने की कोशिश करना। ये अल्लाह ताला की चादर क्या है? हदीस कुदसी है, अल किब्रु रिदाई, रिदा कहते हैं चादर को। अल्लाह कहते हैं किब्र यानी बड़ाई या ख़ुद को बड़ा बनाना, ये मेरी चादर है, और जिसने मेरी चादर मुझसे छीनने की कोशिश की मैं उसको जलील कर दूंगा। मतलब यही है कि बड़ा ना बने। खालिक से मखलूक का तो फ़र्क हो सकता है, लेकिन मखलूक का मखलूक से फ़र्क नहीं हो सकता। बड़ाई अल्लाह की चादर है, उसी को सजती है। अब पहला था अल्लाह के मामले में क्लियर है, अल्लाह को मान रहे, अल्लाह की बात नहीं मान रहे। दूसरा रसूल के मामले में थे, समझ गए अल्हम्दुलिल्लाह कि रसूल के तरीके पे नहीं चलना, उनका लाइफस्टाइल नहीं अपनाना। अब जो हम अपना इंसानों के मामले में करें, इसकी फिर 7 किस्में अब हम पढ़ेंगे, इसको नोट कीजिए। इंसानों का इंसानों के मामले में तकब्बुर, यानी जब हम इंसानों के मामले में तकब्बुर करते हैं तो इसके 7 बड़े सबब होते हैं, 7 big reasons। सबसे पहला सबब यानी सबबे तकब्बुर में सबसे पहला बड़ा सबब इल्म है। अल्लाह हमें इल्म का तकब्बुर ना दे। इल्म की बुनियाद पर जो तकब्बुर होता है ये बहुत बुरा तकब्बुर है। बाज़ लोग समझते हैं कि हम बड़े इल्म वाले हैं, हम नेक हैं, लोगों को हमारी इज्जत करनी चाहिए। ऐसे लोग अपने बारे में बहुत बातें सुनना चाहते हैं, आपने हमारे घर आकर इज़्ज़त बख्श दी, हमने इनके घर जाकर इन पर एहसान किया। अगर इस किस्म के जुमले किसी को अच्छे लगते हैं तो वो समझ जाए कि वो अपने इल्म के तकब्बुर में आ चुका है। फिर ऐसा शख्स उठते बैठते रोप डालता है, मैंने वहाँ से पढ़ा, मेरे वो उस्ताद है, मेरा वो मदरसा, मैंने इतने साल का कोर्स किया, मैं आलिमा, फाजिला, हाफिज़ा, पता नहीं क्या कुछ, डिग्रियों का नाम, ओहदों का नाम। याद रखिए, ये इल्म का तकब्बुर होता है। कुछ लोगों के तो नाम को ढूंढना पड़ता है अंदर, उसके इर्द गिर्द इतने साहब के इलाके होते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म दिया, अगर वो इस किस्म के तकब्बुर का शिकार हो जाते तो कभी भी अल्लाह की फरमा बरदारी नहीं कर सकते थे। कुरान क्या जायद है, अल्लमा आदमल अस्माकुल्लाह, पहली नेमत जो आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में आने के बाद मिली वो इल्म की नेमत थी। तो फिर अल्लाह का हुक्म तो नहीं मान सकते थे ना। अभी खुलासा है, बाद में मैं अपने लफ्ज़ों में फिर बता दूंगी इंशाल्लाह। समझ आ गए कि इल्म का तकब्बुर भी कोई चीज़ है। इलाज क्या है? इल्म के तकब्बुर का इलाज क्या है कि इंसान असल इल्म ले, अपने अंदर तकवा पैदा करे, ख़ुद को एहसास दिलाए कि अल्लाह ताला के इल्म के मुकाबले में मेरा कोई इल्म नहीं, और दूसरा ये कि वो इल्म जिसके साथ मेरा अमल नहीं वो मुझे कामयाब नहीं करा सकेगा। इसलिए ऐसा शख्स अपने आप को अमल में बढ़ाने की कोशिश करे, अपने से ज़्यादा इल्म वालों की सोहबत में बैठे और वहाँ जाकर ख़ुद को ठीक करे, यानी ज़्यादा इल्म वालों के साथ बैठे ताकि आपको अपना इल्म कम लगे। हमारा हाल क्या है? अंधों में काना जो भी होगा। तो चार लफ्ज़ पढ़ के अपने आप को आलिम कहते हैं। अल्लाह हमें इस उजब से बचा दे। जब ऐसा करेंगे, दूसरों में बैठेंगे, तो इंशाल्लाह इलाज होगा। तो पहली वजह तकब्बुर आने की, इल्म का मान। अच्छा, जैसे दीन के इल्म का मान है ना, दुनिया के इल्म का, बड़ी बड़ी डिग्रियों के नाम, यूनिवर्सिटीज़ के नाम, कहाँ से पढ़े, ये भी ब्रांडेड हो गया। किस इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े, गाड़ियों के पीछे अपने पोस्टर्स लगाए होते हैं, स्टिकर्स लगाना, ये सब तकब्बुर है। दूसरा सबब नोट कीजिए, जोहद और इबादत, कसरत इबादत का गुमान होना, अपनी इबादत को बड़ा समझना। और ये तकब्बुर इबलीस का था, इसको भी यही खुशफहमी थी कि मैंने अल्लाह की इतनी ज़्यादा इबादत की है। ऐसा शख्स अपनी इबादत का बहुत ज़्यादा जिक्र करता है, और फिर ऐसा शख्स अपने जोहद और इबादत की वजह से अपने लिए इज़्ज़त चाहता है और अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है। इसको ऐसा लगता है बस मैं ही ये काम कर सकता हूँ। कभी सुनी अपने लोगों की बातें, बस मैं तो तहज्जुद पढ़ती हूँ, मैं तो इतने नफिल पढ़ती हूँ, मैंने तो 500 दानों की तस्वीर रखी हुई है, मैं तो बड़ा दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ। ये सारा इबादत का तकब्बुर होता है। इसका इलाज क्या है, क्या करना है जी, बताइए। अपनी इबादत की रूह को देखें, किस तरह से की है, कैसी की है, तो इससे बचेंगे। तीसरा सबब नोट कीजिए तकब्बुर का, और वो क्या है, ज़ुबान से तकब्बुर का इजहार करके अपनी तारीफ करना, अपने साहिब करामत होने का दावा करना। मतलब मेरी तो दुआ जी बड़ी जल्दी, यानी जब आपको अपनी इबादत का ज़ोम होता है ना, तो आप फिर ये बातें करते हैं, मेरी तो दुआ बड़ी कबूल होती है, फुलां की तो ज़ुबान काली है, उसकी बददुआ ना लेना, और तुमने मुझे सताया, देखना अल्लाह तुम्हारा हशर में क्या अंजाम करेगा। यानी बड़े बोल बोलना अपने बारे में, इससे रुके, ज़ुबान से अपनी बड़ाइयाँ बयान करना। इलाज क्या, ज़ुबान को सीले, ज़िप द माउथ, कम बोलें, जब भी बोलें तो सोच के बोलें कि ये लिखा जा रहा है, कल पकड़ी जाऊँगी। फिर देखें, कभी कभी इंसान अपनी इबादत का दूसरों को रग़बत दिलाने के लिए तस्करा कर सकता है, लेकिन बड़ाई का एहसास नहीं दिला सकता। एक और सबब नोट कीजिए तकब्बुर का, नसब। हम तो हाशमी हैं, हम तो सैयदजादे हैं, और हम तो शेख हैं, और हम तो राजपूत हैं, जो मर्ज़ी कह लीजिए, हम ख़ानदानी लोग हैं, हमारा ख़ानदान बड़ा अच्छा है, हम तो फ़लाँ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, और तुम्हें पता है मैं किस नस्ल से हूँ। वो ऐसे जुमलों को बोलने वाले होते हैं, इसकी निशानियाँ बहुत सारी हैं। मसलन, अपने ख़ानदान से बाहर शादी नहीं करनी। ऐसे लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। ऐसे लोग बाज़ दफ़ा इस किस्म के तकब्बुर में आने लगते हैं, जिसकी वजह से दूसरे ये सोच लेते हैं कि वाकई ये बड़े आला किस्म के लोग हैं। कभी आपने सुना लोगों को अपने ख़ानदान की बढ़ के मारते हुए? मक्का वालों की भी यही आदत थी, हज करने जाते थे और अरफात में बैठकर बाप दादा के किस्से छेड़ते थे। अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र किया कि अल्लाह का जिक्र करो जैसे अपने बाप दादा का जिक्र करते हो। तो इसका इलाज क्या है कि इंसान सोचे कि अल्लाह की नज़र में तो वही बड़ा है जो मुत्तकी है। सूरह हुजरात में आता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाही अतकाकुम, मुत्तकी बनने की कोशिश करें। इसी तरह एक सबब है तकब्बुर का, शक्लो सूरत। और अमूमन माजरत के साथ कहूँगी कि ये मर्ज़ औरतों में होता है, अब तो मर्दों में भी आने लग गया, मर्द भी मेकअप करने लग गए, अल्लाह की पनाह। शक्ल व सूरत, खूबसूरती, मैं तो खूबसूरत ही बहुत हूँ, पाँव नीचे ना रखिए मैले हो जाएंगे, और हाथ नीचे ना रखिए, ऐसा बंदा ज़मीन पे सजदा भी कैसे करे। तो शक्ल व सूरत की खूबसूरती का तकब्बुर बहुत बुरा तकब्बुर होता है। इलाज क्या है, वो हदीस सामने रखिए कि अल्लाह ना तुम्हारी शक्लों को देखता है, ना तुम्हारे मालों को देखता है, बल्कि वो तुम्हारे आमाल और तुम्हारे दिलों को देखता है। फिर इसका एक और इलाज है कि आईने का इस्तेमाल कम करें। शक्ल को कम से कम मौसवे बहस बनाएं, घरों में जानबूझकर ये जुमले बोलना छोड़ दें कि दुल्हन कैसी लग रही थी, फलां का बच्चा कैसा है, यानी शक्लो सूरत को डिस्कस करना छोड़ दें। और अफसोस है कि हमारे कल्चर में मुर्दे तक की शक्ल डिस्कस हो रही होती है, नूर कितना था, रंग कितना था, और मुझे तो जहन्नमी लगते हैं, रंग तो काला ही हो गया था। याद रखिए कि ये एक हमारी वजह है, यानी ये दीन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, चलिए। छठा तकब्बुर का सबब माल। जहाँ बैठे अपने कारोबार का जिक्र शुरू किया, हम तो पैसे वाले जद्दी पुश्ती नवाब, मेरे तो दादा की इतनी ज़मीन है, मेरे तो सुसर करोड़पति अरबपति, आधा शहर उनका उन्होंने ख़रीदा। भाई आपको लगे किसी को क्या लगे, वही सूरत हदीद में आता है ना, तकासरों फिलम वाली वल औलाद। और सातवां सबब जो इसके साथ ही है, दोनों का इलाज इकट्ठा ही है, वो क्या है, कुव्वत पावर। MPA MNA वज़ीर हैं, मशीर हैं, वो तो एक्सियन हैं, यानी ओहदों का तकब्बुर। लोगों को अपनी कुव्वत पे मान होता है, मेरी बड़ी कुव्वत है, जैसे सुपर पावर होने का दावा। अपने आप को बड़ा समझना, जैसे कौम आद का नारा था कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर ये दोनों तकब्बुर हैं, इसका इलाज क्या है, अपने आप को पहचाने, अपनी असल देखें, अपने रब को पहचाने, इंसानों के अंदर अपने आप को रखें, अकेले ना रहें, अपने लिए कोई नुमाया जगह ना ढूंढें। एक होता है इल्म और एक होता है अमल, दोनों को जमा करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि तकब्बुर ख़त्म होगा। फिर इसी तरह अपने तकब्बुर का इलाज करना है तो अपने आप को भूखा रखें, अपने आप को प्यासा रखें, कभी कभी अपने आप को गंदा भी रखें, फटे हुए कपड़े हैं, पैबंद लगे कपड़े पहने, अपने आप को पहचानें। आप महसूस करेंगे कि मैं कुछ नहीं हूँ, और फिर अपने आप को इबादत में लगा दें। जितना ज़्यादा आप इबादत के अंदर आते जाएंगे, उतनी ही चीज़ें अल्लाह ताला की रहमत से आसान होती जाएंगी। क्या पता चला कि जब आप और मैं अपने अंदर से बड़ाई के सांस को निकालेंगे तो हमारी ज़िंदगी में सुकून आएगा। तो ये तो एक तकब्बुर के मामले में हमारा खुलासा था।